عليه الطاهرين الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ابھی جیسا کہ مبشر بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے یہ اجازت چاہ رہے تھے کہ نہج البلاغہ کے کچھ اقوال پڑھ دیں. ظاہر ہے کسی مومن کو اس سے بڑی شرف یابی کوئی نہیں ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے کچھ اقتباسات سن لیں. بہت بڑی شرف یابی ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے. اور دراصل نہج البلاغہ کے بیان کرنے والے کی حقیقی امامت اور ولایت سے رخ موڑا گیا, جس سے 1400 سال کے مسلمانوں کی جو کرب کی تاریخ ہے اسی سے عبارت ہے. کرب کی تاریخ ہے, اور آج جو جس سچویشن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ نوبت اس حد کو پہنچی ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے شروع ہی میں غلط فیصلہ کیا, اور انتہائی غلط فیصلہ کیا. کیسے بھلا ہم اس چیز سے رخ موڑ سکتے ہیں اور اس سے بے نیاز رکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ اس سے بے نیاز ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ایک انتہائی یعنی کہ حماقت کی گہری کھائی میں گرے ہوئے ہیں. تو شام کا موضوع اس وقت ایک برننگ ایشو ہے نا, سلگتا ہوا موضوع. اور اس وقت جیسا کہ مبشر بھائی نے بتایا کہ ہر گویا کہ ٹی وی چینل پر, انٹرنیشنل میڈیا پہ اور لوکل میڈیا پہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے. لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ اس طریقے سے موضوع بحث نہیں بنا ہوا ہے کہ جس طریقے سے عراق کی دو جنگیں موضوع بحث بنی تھی. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ موضوع بحث بنانا نہیں چاہتے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ موضوع بحث بنائیں گے اگر شام کو تو ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا, ہماری انویسٹمنٹ ہوگی اور فائدہ کچھ نہیں اور رسوائی ملے گی. اس لیے کہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ, چونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دو جنگوں میں عراق کے یعنی 91 میں جو لوگ اس عمر کو ہیں کہ 91 میں پہلی جنگ خلیج جو تھی جس میں صدام نے کویت پر حملہ, ایران عراق جنگ سے فارغ ہونے کے بعد امریکہ نے اس کو شہ دلا کر کے کویت پر حملہ کروا دیا, اور پھر کویت پر جب حملہ کر دیا اس نے تو اس کو غاصب قرار دیا, اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروائی اور پھر اس پر جنگ مسلط کر دی. اس وقت بھی لوگ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں لوگ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. 15 جنوری 1991 کو وہ اس نے اسٹرائک کیا تھا, اس نے ایئر اسٹرائک کا آغاز کیا تھا امریکہ نے. اور اس وقت لوگوں کے اندازے ایسے ایموشنل تھے, جذباتی تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ آرمی چیف تھے اس وقت جناب اسلم بیگ پاکستان کے, وہ اپنی انالیسس میں کہتے ہیں, اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ وہ صدام فتح یاب ہوگا. اور خود کا یہ عالم ہے, اس آرمی کا یہ عالم ہے کہ سینکشن سے اتنا ڈرتی تھی امریکہ کہ بھائی اگر امریکہ ہم پر سینکشنس لگا دے تو ہم تو کلیپس کر جائیں گے, ہماری اکنامی کلیپس کر جائے گی, چنانچہ ہم امریکہ سے کوئی کنفرنٹیشن مول نہیں لیتے ہیں. اپنے معاملے میں اتنا حقیقت پسندانہ نہ رویہ, اور دوسروں کو اپنے تجزیے سے اور اپنی اس سے آگاہ کرنے کے لیے بڑی یعنی کہ بے باکانہ طریقے سے فرما دیتے ہیں کہ وہ عراق اور امریکہ کی جب جنگ ہوگی تو صدام جو ہے فتح یاب ہوں گے. بہرحال وہ سب. تو اب اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب حزب اللہ پر حملہ آور ہوتا ہے اسرائیل 2006 میں, تو حامد میر جاتے ہیں اور شاہد مسعود جاتے ہیں اور بھی دیگر بہت سارے چینلز جو اس وقت موجود تھے سب جاتے ہیں, اور وہ اپنی بسات بچھاتے ہیں شطرنج کی مانند, میڈیا کی بسات, اور اپنی دکان لگاتے ہیں اور پھر وہ پل پل کی خبریں دے رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ پل پل کی خبریں دیں گے اور یہ بالآخر ان خبروں کا ماحصل یہ ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل سے لڑنے کا نتیجہ ہوا کہ بالآخر مغرب اور اسرائیل کی قوتوں نے مل کر کے یا اسرائیل نے حزب اللہ کو نشانہ برد بنا دیا. ताकि फिर मुसलमानों के हौसले इतने पस्त हो जाएं कि फिर कभी इसराइल और इससे लड़ने की, है ना। और मीडिया की जो ये टैक्टिस होती थी, ये जाहिर है कि ये बिला फायदा नहीं थी। इसकी खुद मगरिब और इसराइल जो है मटेरियली इसको, यानी कि फाइनेंशियली इसको पे करता था। ये पेड एक मूवमेंट होती थी, एक पेड कैंपेन होती थी, ऐसा नहीं है। काफ़ी उसके जाहिर है कि ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं और लोगों में गोया के नफसियाती तौर से लोगों के मोराल को बुलंद करना, लोगों के मोराल को नीचे गिराना, ये मीडिया के हाथ में होता है पैसों के ज़रिए। लेकिन बहरहाल जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई, यानी कि वो एक शेर है गालिबन फारसी में उनका, ख्वाजा अजमेरी का, अपने दाता दरबार के इसमें या निज़ामुद्दीन औलिया के इसमें, कि बिसियार खूबा दीदें हम अम्मा तू चीज़ें दिख रही, हमने बहुत सारे टैलेंट्स देखे हैं लेकिन तुम कुछ और, तुम चीज़ ही और हो। तो वो हिज़्बुल्लाह की जो मुज़ाहमत थी, मुकावमत थी, एक बेनज़ीर थी, अब वो चीज़ ही कुछ और थी। चुनांचा कुछ दिन तक वो लपेटे और दो चार ही दिन में जब उन्होंने देखा कि मीर कावर टैंक के भुस बना के रख दिए हैं और इसराइल और वॉरशिप को, सैयद असदुल्लाह ने आकर कहा कि वॉरशिप हमाली के मानने वाले, देखो वॉरशिप तुम्हारे डूब रहे हैं किस तरीके से, तो हमने जो निशाना बनाया और तुम अभी और तुम जंग के मज़े चखोगे और तीन, तो बिल्कुल उस वक्त रिपोर्ट देने पर मजबूर हो गए खुद हामिद मीर और ये वो। लेकिन फौरन इन्होंने बसात वहाँ से लपेट दी, लपेट के चले आए और वो सारा इनका ये जो जियो का और तमाम, ये हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जंग अभी जारी ही थी कि इन्होंने वो, इसलिए कि जाहिर है उसमें देख रहे थे कि हम कोई वो रिपोर्टिंग तो कर नहीं सकते हैं वरना रुसवाई मुकद्दर होगी, और पैसे अगर मिल भी रहे हैं तो रुसवाई मुकद्दर होगी, लोग थू थू करेंगे। बहरहाल इनको शर्म आ गई, ये आए उसके ऐसे। बहरहाल इनको मगरिब ने ये सपोर्ट दिया कि ब्रिटेन ने उन्हीं दिनों में बरतानिया ने कोई ऐसे ही अलकायदा टाइप के दहशतगर्द को ट्रेन में कोई दहशतगर्दी करा दी और वो फिर पकड़ के फिर पाकिस्तानी मीडिया को एक उन्होंने एक मौजू दे दिया, फिर वो पाकिस्तानी था और फिर वो उसी पर सारी बात। और हिज़्बुल्लाह का इशू जो है वो उन्होंने उसमें ये कर दिया, हाँ उसको ख़त्म कर दिया और एक हल्का सा न्यूज़ दे देते थे। लेकिन बिलाआखिर बहरहाल वो पिरोज़ और कामयाब हुए। तो मैं सोच रहा था अभी ये केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल क्या होता, जो ये जंग के बिगुल अमेरिका बजा रहा है जंग के बिगुल, उस पर अभी कुछ दिन, दो तीन रोज़ पहले रहबरे मुअज़्ज़म ने हसन रूहानी और उनकी काबीना के चंद चीदा लोगों के साथ नशस्त की थी और उसमें आपने फरमाया था एक दो जुमले, उन्होंने दो चार जुमले जो कहें कि ये आतिश अफरोज़ी है, ये जंग अफरोज़ी है, यानी वार मॉन्गरिंग है उसकी, और ये सरासर जंग तलबी है। केमिकल वीपन्स महज एक फरेब है और ये सरासर झूठ है और इस जंग तलबी का नतीजा अमरीका कोई नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा, अमरीका नुकसान में रहेगा और उसको उसके भयानक नतायज का सामना करना पड़ेगा। ये सब एकदम एक कॉन्फिडेंस उससे पहले। तो मैं इस पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि रहबर मुअज़्ज़म का एक तुलानी तजुर्बा है इस्लामी मुज़ाहमत का, मुकावमत का, है ना। उन्होंने अपनी कौम, अपनी मिल्लत ईरान जो इस्लाम की दिलदादा है, है ना, उनको एक तवील तजुर्बा है। इनसे नबर्द आज़माई का, इनकी साजिशों और घिनौने मनसूबा बंदियों से मुकाबले का, चांचा वो अहले नज़र हैं। उन्होंने दो जुमले में बात तमाम कर दी और ये किया। लेकिन हकीकत यह है कि रहबर ने जो बात की उनके अपने तजुर्बात पर मबनी थे और ये बातें खुद अमेरिका के अहले नज़र ने पहले ही कही थी, पहले ही अमेरिका के मतलब। मसलन ये कि अमेरिका के मतलब कहा जाए कि अमेरिका कैन नॉट लीव विदाउट वार, अमेरिका जंग के बगैर रह ही नहीं सकता। अमेरिका इज़ अ कंट्री मेड ऑफ वार, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो जंग ही के सबब मारज़े वजूद में आया है। तो अमेरिका की जो रहबर ने जो कहा वार मॉन्गरिंग बिल्कुल हकीकत उसकी फितरत है। ये वो बहुत बड़ा अमेरिका का मशहूर है जॉर्ज कार्लिन, कॉमेडियन है, बड़ा इंसाइटफुल कॉमेडियन है। जब ये जंग चल रही थी ना पहली गल्फ वार, तो उसमें उसने बड़ा तंजियत, वो तो जाहिर है कि तंजो एतराज़ की इसमें इस्तेहज़ा के इसमें तजिया करते हैं और मजाक उड़ाते हैं अपनी किसी मुल्क की गलत मौसी का। ये जो कॉमेडियन तो यही करते हैं, हमारे यहाँ भी जैसे कि अनवर मकसूद हैं वो, और इस तरह के दूसरे अब तो बहुत छिछोड़े लोग भी हैं और ऐसा के, लेकिन एक बहरहाल आप देखते होंगे कैसे करते हैं। लेकिन वो तो जॉर्ज कैलिन बहुत बड़ा कॉमेडियन था, उसने कहा कि असल मसला है कि वी लाइक वार, हम जंग पसंद करते हैं, है ना, और वी आर गुड एट इट, हम इसमें बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, वी आर नॉट गुड एट एनी थिंग एल्स एनी मोर, अब हम किसी दूसरी चीज़ में ईजी महसूस नहीं करते हैं आइंदा, इसी में जंगी में। तो ये उसकी जंग तलबी जो रहबर ने कही ना कि वो जंग तलबी, ये उसने उस वक्त जब 1991 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी। फिर तो अमेरिका दरहकत है ही एक जंग पसंद, मतलब कहते हैं कि अमेरिका इतना जंग पसंद है कि 1947 तक उसका जो डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ वार हुआ करता था, यानी उसका ये उसका कोई वज़रात दिफा उसके यहाँ नहीं होती थी, उसके यहाँ वज़रात जंग हुआ करती थी। चूँकि जब बजा तौर से ईरानी, आप सुनेंगे अगर कभी खबरें चाहे टीवी में या बजा तौर से इनकलाब के बाद ही से, इनकलाब से पहले की बात नहीं, लेकिन मैं तो इनकलाब के वक्त ही से इसको अपने उस वक्त जवानी का दौर था हमारे बिल्कुल, तो मैं सुनता तो उस वक्त से लेकर ईरानियों ने कभी भी वजीर दफा नहीं कहा, हमेशा वजीर जंग कहा, यानी वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर को यानी जो डिफेंस डिपार्टमेंट के सरबराह को, चाहे वो जो इस वक्त चेक हैगल है या इससे पहले लोग गुजरे हैं, तो उनको हमेशा उसने वजीर जंग कहा, वजीर जंग, और बजा तौर से कहा कि उसकी फितरत जंग है, उसके दिफा के लिए वो कभी नहीं, उसकी फितरत नहीं। इसी तरीके से एक वो वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेस पंडित है पॉल फायरल, तो उसने भी बहुत खुल करके ये बात कही, क्योंकि मसल उसने कहा कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो वार इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी वार इकोनॉमी है, और ये ना मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमी है ना एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है, हत्ता के कंज्यूमरिज्म की भी इकोनॉमी, मतलब क्या होता है ना कि हम नापसंदीदा कहते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी कमाओ कम खर्च ज़्यादा करो, नहीं। और उसने कार्लिन वो जॉर्ज कार्लिन ने मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा था उसने कि अब हम ये ना कोई डिसेंट चीज़ नहीं बनाना चाहते हैं, अब हमारी पॉलिसी है अमेरिका की कि हम कोई टेलीविज़न नहीं बना चाहते हैं, हम कोई और चीज़ डिसेंट चीज़ नहीं बनाते हैं ना, हम यानी कि वी डोंट वांट टू गिव एजुकेशन टू किड्स एंड हेल्थ केयर टू ओल्ड्स, ना हम बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, ना हम बूढ़ों को सेहत की सहूलियात फराहम करना चाहते हैं, हमारा एक ही हम गम है वो दुनिया में जंग, वी अपीयर टू बी टाइगर हैप्पी टू बॉम्बार्ड एनी वीक कंट्री कॉन्फ्रंटिंग आवर इंटरेस्ट्स, कि हम किसी कमज़ोर मुल्क को बॉम्बार्ड कर देना चाहते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा हो या काम कर रहा हो, हमारे मफादात से मुतसादी हो। तो इस मामले में अमेरिका जंग के मामले में बहुत ही ट्राइगर हैप्पी हो, ट्राइगर हैप्पी, ये ट्राइगर हैप्पी अंग्रेज़ी की एक बहुत ही मशहूर इस्तलाह है जो आमतौर से सहाफ़ती हलकों में इस्तेमाल होता है, ट्राइगर यानी वो बंदूक की जो ट्राइगर होते हैं ना जिससे कहते हैं, तो वो ट्राइगर मतलब कि ट्राइगर हप्पी का मतलब है कि बहुत जल्दी जो है ना ट्राइगर पर हाथ रखना और खोल देना, जो पुलिस फौरन किसी मुजाहरे में पुलिस चलाती है तो उसको कहते हैं कि पुलिस अपीयर्स टू बी ट्राइगर हैप्पी, ये कमेंट आते हैं कि अगर फौरन खोल दिया तो अमेरिका की जो इस वक्त सिफत है वो ट्राई करके दरअसल। लेकिन उसके साथ ही एक बात है कि आपको बता दूं कि ये सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर उसका बस चलता है ना। और अगर वो इससे पहले जाहिर है कि उसके पास एक पुराना तजुर्बा है, अमेरिका 234 साल पहले माराज़े वजूद में एक मुल्क की हैसियत से आया था, 234 ईयर्स, और इस 234 साल में उसका रिकॉर्ड ये है कि उसने 70 जंगें लड़ी हैं, जिसमें से 10 बहुत ही मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं, 10 बहुत ही बड़ी जंगें उसने लड़ी, तो इसकी तारीख ही पूरी जंग अफरोजी की है, दुनिया में तबाही और फसाद फैलाने की है, तसल्लुत पसंदी की है, ये इसकी नेचर है। लेकिन देखिए किसी हर वो जो फारसी का है कि हर कमाली रा जवाल, कि हर कमाल को एक जवाल है। जब आज से 34 साल पहले ईरान का इनकलाब रुनुमा हुआ, ठीक अमेरिका के 200 साल जबकि वो अपनी ताकत के नुक्ते उरूज पर नशे में चूर था और मदहोश था, और उस वक्त खुदा ने इमाम के ज़रिए एक इनकलाब यानी कि इनकलाब अता किया दुनिया इंसानियत को, इस्लामी इनकलाब ईरान के नाम से, ठीक 200 साल, यानी वो ऐसा लगता है कि जैसे खुदा की साहब कि 200 साल की इसको मोहलत मिली थी कि इसकी यानी कि अमेरिका की ताकत को, ठीक 234 साल, अब इस वक्त 234 जाहिर है 34 साल पहले ईरान का इनकलाब भी आया था, तो 234 साल पहले, तो इसमें ये अमेरिका ने आपसे अर्ज किया कि 70 जंगें लड़ी हैं उसने, और 10 जंगें ऐसी हैं जो बहुत ही भयानक जंगें लड़ी हैं उसने दुनिया में, तो पूरी तारीख जंग अफरोजी की है इसकी। तो वो मैं जिस बिजनेस कार्टेल जो पंडित जिसको मैं पॉल रैफेल की बात कर रहा था, तो उसने लिखा उसने साफ लिखा है कि डीप इनसाइड वी लव वार, कि हम बिल्कुल अपने नहान खाने दिल में जंग से मोहब्बत करते हैं, वी थ्राइव ऑन वार, हम जंग ही पर तरक्की करते हैं, है ना, वॉर एक्साइट्स आवर बिजनेस ब्रेन, जंग जो है हमारी गोया के तजारती जहन को निशोनुमा और बालिदगी बख्शता है और उसको फ़रोग बख्शता है। उसने ये उस बिजनेसमैन ने कहा था, और ये कब कहा था, जब इराक की अभी जंग हो रही थी, यानी ये जो दूसरी जंग 2003 में जब उसने हमला किया, इस दौरान ने इससे बहुत सारी बातें लिखी, और फिर उसने कहा कि वॉर इन आवर जीन, हमारी जीन्स में वॉर है, वॉर इन आवर डीएनए, हमारे डीएनए में जो तश्कील पाई है उसमें वो जंग अफरोजी है। और उसके बाद से उसने कहा कि वाई डू नॉट वी एडमिट और एक्सेप्ट दैट वी हैव लव अफेयर्स विथ वार, हमारा वार के साथ एक तरह से लव अफेयर है, मुआशिका है हमारा। दरअसल इसी तरीके से अमेरिका जिस जमहूरियत की बातें करता है उसके मुतल्लिक भी खुद उनके लोगों ने लिखा है, हम और आपका, उन्होंने बहुत उनके मुबस्सिर ने कहा कि दरअसल ये डेमोक्रेसी जो है ये अमेरिका के लिए एक लीथल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, फॉर क्रिमिनल इंटरवेंशन, डेमोक्रेसीज आर लीथल इंस्ट्रूमेंट्स, लीथल वीपन्स फॉर क्रिमिनल इंटरवेंशन, एक मुजरिमाना दखालत के लिए, मुजरिमाना तसल्लुत के लिए, दखल अंदाजी के लिए किसी मुल्क के मामलात में, किसी दूसरे मुल्क के आज़ाद मुल्क के मामलात में जमहूरियत जो है उसका आले कार है। अमेरिका की जो जमहूरियत है, मगरिब की जो जमहूरियत है, वो आले कार है, ये खुद इनके लोगों ने राज फाश किया उसका और उसकी तजिया किया है, खुद वो लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। और हमारे यहाँ तो बाज़ जैसे कि लोग जानते हैं मसलन के जमालुद्दीन अफगानी और इस असद आबादी वीरानी, उनको असद आबादी कहते हैं और आम लोग अहले सुन्नत हज़रात उनको जमालुद्दीन अफगानी कहते हैं, और جمال الدین افغانی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے اور علامہ اقبال کی کہ شیعہ ان کو شیعہ کہتے ہیں اور سنی ان کو سنی کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس ہمارے ہاں ایسے بالغ نظر ہستیوں نے اس طرح کی تسلط پسند طاقتوں کا راز کھولا ہے اور وجہ طور سے امام خمینی کے علاوہ بھی ایرانی دانشوران ان کی قدردانی کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, خواہ ان کا تعلق سنی دنیا سے خواہ شیعہ دنیا سے. ایسے لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کے مسائل کو صحیح طور سے صحیح نظر سے دیکھا ہو اور مسلمانوں کو غلامی کی صورتحال سے نکالنے کا, جیسے علامہ اقبال. اب علامہ اقبال نے کب اس جمہوریت کے متعلق بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ دیو استبداد ہے جمہوری قبام پائے کو, تو سمجھتا ہے اسے آزادی کے نیلم پری؟ یہ تو ایک جبر و ظلم کا ایک استبداد کا دیو ہے, یہ دیو ہے جو جمہوری پیرہن جمہوری لبادہ اڑے ہوئے اور تم جو ہے اس کو آزادی کی نیلم پری سمجھ رہے ہو, یہ کیا حماقت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. یہ اللہ نے اس وقت کہا, تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. وہ ابراہیم لنکن ایک امریکن جمہوریت کا فلسفر تھا, تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں اس کی جمہوری فکر پر کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش. اشارہ علامہ کا ابراہیم لنکن کی طرف ہے. ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے, یعنی ہوشیار لوگ جو ہیں مکار لوگ جو ہیں, میں یہاں دانے زمرات وہی مغرب کے, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے, یہ نقاب الٹتے نہیں. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں مغربی جمہوریت بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں. یعنی جمہوریت مغرب کی جمہوریت میں بندوں کی اکثریت اور ان کی تعداد کی, خواہ ان کی سوچ سمجھ ہو نہ ہو, نہ ان کے سنے وہ غلام ہوں آزاد ہوں, ہے نا کسی کے زیر ان کا لے جا کر کے ووٹ دلوا دیا بس. دیٹس آل. چنانچہ وڈیرے ہمارے ہاں ایسے جو ویسٹڈ انٹرسٹ رکھنے والے لوگ, طاقت معاشرے میں طاقتور لوگ یہی کرتے ہیں کہ کمزور اپنے رعیتوں کو, اپنے نوکروں کو, اپنے غلام پسماندہ بیچارے جو ان کے ماتحت میں کام کرتے ہیں بیچارے کیا کریں, مجبوری ہیں, اگر نہیں کریں گے تو نکال دیں گے دو وقت کی روٹی, یعنی ان کے اسکوائر میل کا مسئلہ ہوتا ہے, دو وقت کی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, کیا کریں گے. تو یہ علامہ اقبال نے سب کتنا کھول دیا ہر چیز. لیکن اب یہ ہے کہ ہم چونکہ پستی میں مبتلا تھے تو تھے اب تک سے, ہمارے یہاں ایسی بات نہیں کہ لوگوں نے اٹھایا, وہ چلے گئے اپنی باتیں کر کے اور بہت سارے لوگ اپنی کر کے چلے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رہبر معظم نے جو اس وقت فرمایا ہے کہ یہ ایک محض الزام ہے, ڈھکوسلا ہے اور کیمیکل ویپنس کا, اس سے یعنی کہ امریکہ کو شام کے عوام سے کیا ہمدردی ہے؟ کوئی بھی ہمدردی نہیں, کسی مسلمان علاقے کے مسلمان عوام سے اس کی کوئی ہمدردی نہیں, وہ تو اندر سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے اور بہانے تلاشتا ہے کہ قلعہ تباہ کر دیا جائے اس کا جیسے ملے. تو یہ تو ایک الزام میں یعنی کہ کوئی بھی عاقل انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب 1988 میں جنگ ہو رہی تھی, 1988 میں جنگ کے آخری دنوں میں ایرانی فوج نے یہ ہو گیا تھا کہ بصرہ پر قبضے کے لیے بالکل وار جب چلی تو بعد میں تو اپنی ساری سرزمین جب بصرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. امریکہ نے کیا یہ کہ سیٹلائٹ امیجری سے اس کو یعنی کہ ایرانی افواج کی لوکیشن جہاں تھی جہاں وہ لڑ رہے تھے جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے وہ صدام کو کیا, اور صدام نے کیا یہ کہ کیمیکلز اور ویپنز کا استعمال کیا ان کے خلاف, اور کیمیکل ویپنز جو اس کے یہاں دیا تھا وہ رمز فیلڈ نے 1983 میں, جو وہاں اس وقت उसके यानी कि मुशीर था गालिबन, वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइज़र था, और जिस वक्त ये राज खुला है उस वक्त रम्सफील्ड खुद अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर था, और 2003 में जो जंग इराक पर मुसल्लत किया और इराक पर हमला किया उस वक्त वो जंग वज़ीर जंग था, डिफेंस मिनिस्टर जिसको कह लीजिए हाँ, तो उस वक्त खुद था। अब इसने वहाँ 1983 में जाकर के खुद दिया है मसलन ये कि केमिकल वीपन्स, और वो इसी वजह से कि ईरानी फौज बहुत ही पूरी यानी फतह के पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ी थी, अपने तमाम इलाके एक एक इंच के इलाके छुड़ा लिया था। शुरू में क्या था जंग का मामला, शुरू में जंग का मामला ये थे कि मसलन के चंद दिनों में आधे ईरान पर काबिज हो गया था इराक, इतना भरपूर हमला था। लेकिन इमाम एक इलाही औसाफ के हामिल इमाम थे और खुदा की मदद उनको हर तरह से हासिल थी, जाहिर है कि वो जाकड़ी हथियार जो रजा शाह से बदबख्त और खबीस रजा शाह से अमेरिका ने अपने गोया के कॉफर्स को तिजोरियों को भरने के लिए बेचे थे और रजा खान शाह ने खरीदे थे अपनी कौम से खयानत करने के लिए, तो उन जाकड़ी और डेटेड हथियार से सद्दाम को पूरी दुनिया से मिलने वाले सोफिस्टिकेट वीपन्स का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये इमाम का खुदा पर जो भरोसा था, दूसरी बात कि इमाम हक पर थे, इमाम को और किसी चीज की गरज नहीं थी। इमाम के क्या कहा था कि इमाम ने कहा कि मा दुम्बाले वजीफे हस्तीन, कि हम सिर्फ अपने जो हमारा दीनी वजीफा है हम उसको अदा करना चाहते हैं और हमें किसी चीज़ से गरज नहीं है। अगर उस वक्त बड़े बड़े लोगों ने जैसे कि आयतुल्ला मुंतजरी ने कहा था कि भाई तो कौम मर रही है और इनका इक्तसाद ख़त्म हो रहा है, ये इनकलाब ने क्या दिया इन्हें, इमाम नाराहत हुए काफ़ी, उनको ख़त लिखा, उनके ख़त के जवाब में उनको जवाब में लिखा कि मैंने कब कहा था कि इनको यानी कि इनकलाब के नतीजे में दुनिया की के नेमतों से लुत्फानंदोज़ होने के मौके फराहम करूँगा, मैंने ये तो नहीं कहा था, अलबत्ता आखरत की वसअतों की सैर कराने की ज़रूर मैंने खुदा की जानिब से वादा किया। तो मसला यह है कि अमेरिका की जंग अफरोजी की हौसला अफजाई और उसको अपने इस गलत पॉलिसी में जो उसका मोरल हाई रहा, वो इस वजह के एक बड़ा बातिल था जो छोटे बातिलों से नबुर्दाजमा होता था उसको कामयाबी नहीं, लेकिन जब इतना बड़ा बातिल हक के मुकाबले, ठीक उसी तरह जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज़र के बुतखाने में जो सबसे बड़ा बुत था वही नुमाया नजर आता था और छोटे बुत की कोई हैसियत मालूम नहीं होती थी, चुनांचे वो बुत बड़ा उसकी बड़ी धौंस थी और लोग बड़ा, चुनांचे हजरत इब्राहिम ने जाकर के कुल्हाड़े से उसको उसी को सबको मार दिया और उस पर छोड़ दिया, लटका दिया। लोग जब लौटे वो जो त्यौहार में जब वो जो आज भी वो चीज़ होती है गालिबन ईरान में सीजदह बदर के लोग चले जाते ना बाहर, तो उस ज़माने में वो किसी ऐसे ही कोई त्यौहार था नौरोज वगैरह का कि वो चले गए थे बाहर, जब वापस लौटे तो कहा कि भाई वो किसने ये सब किया है, बुलाया गया भाई वो एक आदमी है जो बड़ा अजीब व गरीब बातें करता है, मुमकिन है बुतों का मुखालिफ मालूम होता है वो, मुमकिन है उसने बुलाया गया कि भाई इनसे पूछो ना, ये तुम्हारे बड़े बुत जो हैं उनसे पूछ लो। तो कहा कि भाई ये तो बोलता ही नहीं है, तो उस पर उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, कहा कि बोलता भी नहीं है और तुम उसकी पूजा भी करते हो और तुम इसकी परस्ती भी, वो एक अलग मौजूद। लेकिन कहने का मतलब ये कि अमरीका अब तक जो कुछ एक बातिल छोटे बातिल के मुकाबले में बड़ा सुरखरू और सीना फुला करके चलता रहा है, लेकिन जब उस का सामना तारीख में एक हक से हुआ तो इनकी सारी ऐंठ निकल गई। किसी देखिए ना, ये बड़ी बात होती है कि अमेरिका जैसी ताकत, मतलब हमारा मुल्क था, इंडिया से ना बुर्दाजा हुआ 1971 में, कितने दिन जंग में कितने दिन तक सर्वाइव कर सका, 14 या 15-16 दिन भी जंग को यानी कि प्रोलोंग नहीं कर सका। अगर कोई कमजोर कौम ताकतवर के मुकाबले में जंग को प्रोलोंग कर ले तो ये उसकी कामयाबी होती है। जंग को प्रोलोंग करने के नतीजे में बहरहाल एक कमजोर कमजोर फरीक जो है मजबूत फरीक को थकाता तो है ना। तो लेकिन आप देखिए कि ईरान अपनी तमाम तर बेसरो सामानी के बावजूद, सारी दुनिया की सपोर्ट थी इराक को, इराक सद्दाम महज सिर्फ एक पपेट था सामने का, उसकी है कोई नहीं, सारी दुनिया मिलकर को उसको ये करवाई थी। और आप देखिए कि 8 साल ये जंग लड़ी है ईरान ने, किस वक्त, जबकि उसके पास बेसरो सामानी थी, इनकलाब अपने बिल्कुल नैसेंट एज में था, यानी कि नौजायदगी की हालत में था, अभी अभी ताल, और ये समझते कि भाई टू निप इन द बट के इसको जो है शुरू ही में इसका सर कुचल दो, सांप का बकौल अमरीकनों का कि सांप का सर जो अगर सर उठाए तो उसको शुरू ही में कुचल दो। तो वो उनको ये समझ रहे थे कि सांप, और इसी के लिए उन्होंने सद्दाम को, हत्ता कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त रूस अपने तजुर्बात तल्ख तजुर्बात से और अपनी गोया के एक बहुत बड़े एम्पायर को तोड़ करके अब उसको समझ आई है और इस वक्त ईरान के कैंप में, उस वक्त वो सद्दाम का साथ दे रहा था भाई, सिवाय एक यही सूर्या था, यही शाम था जिसने गोया के ईरान की मोरल सपोर्ट की थी। और मैंने पहले भी अर्ज किया है कि और इसने अपने जो एयर स्पेस थे ईरान को फ्राहम किए थे तो इसे कोई एयर स्पेस भी देने के लिए तैयार नहीं था, और ईरान ने बम्बार्डमेंट के लिए इसके एयर स्पेस को इस्तेमाल, उस वक्त इसके अंदर इतनी जुरत थी और ईरान ने उसी एहसान को याद रखा और उसको। तो अब सूर्या का मसला क्या है, देखिए अब सूर्या का मसला क्यों इतना ज़्यादा सूर्य पर और शाम पर को मौजूए बहस बनाया गया, मौजूए बहस ये बनाया गया है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब का करीब तरीन दोस्त और हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान, शाम, लिबनान, हिजबुल्ला, यानी लिबनान से मतलब हिजबुल्ला, और इन तीनों का जो ट्रेंगी मिलता है, और अब एक इराक भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फज़ल से, लेकिन उस वक्त ये तीन। अब इसके नतीजे में एक जो इनकलाब इस्लामी के ज़ुहूर से अमेरिका के लिए जो ख़तरा पैदा हुआ था वो ख़तरा रोज़ बरोज़ बहुत कवी हो गया, वो वाकई एक हकीकत की सूरत में बहुत ही कवी तर होकर के सामने आया है। और बाईपोलर वर्ल्ड था उस वक्त, अमेरिका ने बड़ी आसानी से सोवियत यूनियन को ख़त्म भाई, उस वक्त आप ये देखें कि पूरी कोल्ड वॉर वाली की तारीख में कभी भी ऐसा कोई मरहला रूस ने भी क्रिएट नहीं होने दिया कि जिससे बिल्कुल जंग की नौबत आ जाए दोनों में, मतलब रूस हालांकि अमेरिका के बराबर की ताकत, बल्कि मैंने बारहा ये अर्ज़ किया है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस एडवांस था, बाद में अमेरिका एडवांस हुआ है उससे, लेकिन उसका स्पुटनिक जो है वो 50s में चला गया था चांद पर, अगरचे वो बगैर इंसान के गया था, लेकिन 69 में अमेरिका ने अपोलो 11 भेजा है चांद पर इसके साथ, तो स्पेस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी में उससे एडवांस था, बिल्कुल इक्वल पावर था मादी लिहाज से, मिलिट्री लिहाज से। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका एक जगह उसने अफगानिस्तान में फंसाया और ख़त्म कर दिया। सद्दाम हुसैन खुद उसका आलाकार था, हलीफ था, लेकिन जब देखा कि भाई ये अब हमारे किसी काम का नहीं है तो इसको अब डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर की तरह इसको कंसाइन टू द डस्टबिन, कंसाइन टू द हिस्ट्री ऑफ डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, तारीख की डस्टबिन में, उसके तारीख के कूड़ेदान में इसको डाल दिया, चाहे एक हल्का सा ट्रैप में फंसाया उसको कोयत के, और फिर पूरे यकमन को उसको बर्बाद कर दिया। और उस वक्त किसी वजह से फिर ईरान ने खुद मिल मिलाकर किसी से जंग रुकवाई, तो नो फ्लाई जोन और क्या क्या करके कितना 10 लाख तो बच्चे मरे हैं वहाँ, 10 लाख बच्चे मरे हैं। और इसी दौरान जब वो जंग रोकता है यानी 91 की जंग रोकता है, तो अहले तशी इसके जुम से बड़े तंग थे, वो उठते हैं इसके मुकाबले में, इसलिए कि वार समझा उन्होंने कि ये वार करके थक गया। खबीस अमेरिका ने सद्दाम को फिर वही केमिकल्स वेपन दिए और पूरी तरह कि इनको मार, इसलिए कि उसका ये था कि इसी मिल्लत ने ईरान में इनकलाब। और इस बुरी तरीके से यानी अमेरिका के फर्स्ट जो गल्फ वार है 1900 का ना, उसके में पसपाई इख्तियार करने के बाद शियों को जो उसने मारा है, तो जो इज्तमाई खबरें मिल रही हैं वो आज तक मिल रही हैं किस तरह से मारा है और किस तरह से उसने उस वक्त भी नर्व गैस जो आज इसका बड़ा अमेरिका कर रहा है ना, नर्व गैस उसने इस्तेमाल किए हैं। और ये जो उसने जो केमिकल एजेंट और सैरिन और इस तरह के गैसेस जो उसने कहा वो सब उस वक्त इस्तेमाल कर चुका है। मैं आपसे अर्ज करूँ कि उसने जब अमेरिका लोकेशन तो जानते हैं उस वक्त क्या, खुद अक़वामे मुत्तहदा के आदाद व शुमार के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा ईरानियों को मारा गया है केमिकल वीपन्स से, जब वो फौजियों के अलावा, और 20,000 फौजी उस वक्त इंस्टेंटली लुकमय अजल बन गए, उससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा फौजी सोल्जर्स ईरान के। और वो वही नर्व गैस सैरिन का इस्तेमाल था, जो होता ये था कि जब वो गैब बसरा को फतह करने तो उसने केमिकल वीपन्स का और अमेरिका के कहने पर इस्तेमाल किया, इसके भी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स हैं, अमेरिका के कहने पर उसके इशारे पर इस्तेमाल किया उसने, किया कि पूरे पूरे इलाके से ऑक्सीजन सक कर लिया और सफोकेशन की हालत में लाखों आवाम ईरान की साइड में। फिर उस खबीस और कमबख्त ने इनके कहने पर अमेरिका ने हलाबचे जो खुद इराक के केमिकल बम मारे वहां, उसके नतीजे में फौरी तौर से 5,000 कुर्द मर गए। तो अब ये बताइए कि रहबर मुअज्जम ने जो फरमाया कि ये जो है केमिकल, तो ऐसे ही इल्ज़ाम है, अरे तुमको क्या, तुमने तो खुद केमिकल वीपन्स कितने इस्तेमाल किए, तुमने तो एटम बम तक इस्तेमाल किए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो इतने बड़े जुर्म के हो तुम खुद मरते हो, तुम क्यों दुनिया, तुम्हारा क्या बनता है कि तुम दुनिया में जमहूरियत की बात करो और तुम दुनिया में अमन और इंसाफ की और आवाम की बात करो। उस वक्त तुमको याद नहीं है बहरीन में जिस तरीके से एक आले खलीफा का ख़ानदान आवाम की पूरी अक्सरियत आज यानी 3 साल होने को जा रहे हैं बाहर निकले हुए, और तुम उनके घरों पे तुम बम मार रहे हो, ऐसे ऐसे यानी कि ग्रेनेड्स फेंक रहे हो और मार रहे हो तरह तरह से उनको, यानी कि वहाँ के डॉक्टर जो इलाज करते हैं ख़वातीन डॉक्टर्स तक को तुमने नहीं छोड़ा, तो वहाँ तुमको ये याद नहीं आ रहे हैं कि सीधी बात यह है कि यह गुंडागर्दी और बदमाशी है। यह बात हमारे मुसलमानों की अक्सरियत को समझ में नहीं आ रही है। इस वक्त मिस्र की फौज जिस तरीके से खुद, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि इख्वान की कोई अच्छी पॉलिसी थी, यकीनन उनकी गलत पॉलिसियों के ना, लेकिन यह कोई तरीका तो नहीं है कि फौज निहत्थे लोगों को इस तरीके से मार दे। इस वक्त मिस्र की फौज धड़ल्ले से मार रही है, एकदम जैसे लगता है कि कोई चीज ने निकलो और मार दो, जितना हजार की तादाद में, हजारों हजार की तादाद में मारा ना अभी हम कुछ ज्यादा दिन की बात, 2-4 में किस तरीके से मारा है। तो अमेरिका ने तो बंद नहीं किया उसका कोई फौजी इमदाद, कोई जो इसराइल के बाद सबसे ज्यादा जो इमदाद दी जाती है, और सऊदी अरब अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके नतीजे में रुसवा भी हुआ कि उसने किस कदर बढ़ चढ़ के अमदाद की, जबकि इख्वानी किसी हद तक उसी वहाबी तफक्कुर के हामिल थे, फिर भी इन्होंने अपने मामूली सी सियासी मफाद के लिए किस तरीके से खून बहाया है निहत्थे इंसानों का, आप जरा देखिए तमाशा देखिए। ये वही मरवान वाली सियासत है, ये वही माविया वाली सियासत है कि इनको किसी मकतब से किसी फिक्र से लेना देना नहीं, महज अपने मफाद, सरासर अपने मफाद। इनके अपने आदमी अगर उनके मुकाबले में आ जाएंगे तो जो जैसा कि हमने इमाम अली की फिल्म में देखा ना कि वो अमर बिन अल आस जब माविया से कुछ ब्लैकमेलिंग करने लगा तो माविया ने कहा चल तू भाई इसको पैर बांध के ज़बह कर, फिर वो ठीक हो गया। और अब इंसान जब जलील होता है तो आपने देखा कि फिर उसी अमर बिन अलास ने जा कर के क़ज़िया तहकीम वाले मामले में किस तरीके से मौला को उसने बेदखल किया धोखे से, और अशअरी अबू मूसा अशअरी से ये गोया कि ये तारीख का बयान इसलिए नहीं मैं कर रहा हूँ कि कोई हमें यानी कि तासुब का ये करना है, लेकिन मतलब कि हम बार बार तारीख में एक ही हथकंडे से डसे जाते हैं, एक ही बिल से डसे जाते हैं, ये एक अजीब हमारा अफसोसनाक वाक्य है। कि तो बहरहाल उस वक्त अमरीका को याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा, तो ये कौन सा है दुनिया को, तो पूरे ये जो हमारे तजियाकार बैठते हैं, कल बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख करके, वो हसन अस्करी साहब थे, जाहिर है कि वो हैं तो सेकुलर लेकिन पैदाशी तो शिया हैं। अब आ रहा है कि भाई वो बिल्कुल एक तरफा कर रहे हैं कि असल मसला ये है कि वो जनाब अमेरिका के लिए यह है कि वो उसकी वो करेगा ये कि वो वारशिप जो ला रहा है तो वो वारशिप से दो चार मिज़ाइल बनाएगा और इस तरीके से बशारुल असद की गोया के वो फौजी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर देगा। उसके बाद से जो जॉर्डन में उसने रखे हैं उसको तो शायद अंदर ना भेजे, अलबत्ता फिर मिलिटेंट्स को भेज करके वो अपने हिसाब से वो सारा काम कर लेगा। इसके लिए बहुत आसान है, ये जनाब कामरान खां के कुरान में फरमा रहे हैं जी, बड़ी आसानी। ये हमारे इंटेलेक्चुअल्स का हाल है, ये हमारे दानिश्वरों का हाल है। ये वही बात है कि अमरीका को इन्होंने बमंजिला खुदा तस्लीम किया हुआ है और चाहते हैं कि खित्ते में जो भी डेवलपमेंट होगी वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक होगी। भाई वो दौर गया, इसलिए कि अमेरिका के मुकाबले में जितने लोग थे वो बातिल थे, बातिल पर थे। इमाम खुमैनी का जिरियान जब आया, इनकलाब जब आया, तो वो हक पर है, चुनांचे उस वक्त से अमेरिका की मर्जी नहीं चली, तबस में अमेरिका का नहीं चला, जहाज टकरा गए। हालांकि वहां उस वक्त ईरानी फौज को कोई खबर नहीं थी, सिपाह को कोई खबर नहीं थी, तो इमाम ने कहा कि तुम अगर बेखबर थे तो तुम्हारी जगह पर खुदा ने हवाओं को मामूर कर दिया, जर्रात को मामूर कर दिया और तुम्हें माफ किया, तुम्हारी गफलत पर तुम्हें माफ किया और फिर भी तुम्हें पिरोज किया, कामयाब कर दिया, अमेरिका रुसवा होकर भागा। उस पर कार्टर ने कहा था कि लगता है कि खुदा भी खुमैनी के साथ है, जिमी कार्टर जो उस वक्त अमेरिका का था, कहा लगता है खुदा भी खुमैनी के साथ है। तो ये इनकलाब जो सूर्या को सजा दी जा रही है वो ये है कि अव्वल तो सबसे बड़ी कि एक जहानी कुव्वत के तौर पर इमाम खुमैनी फरमाया था ना कि हम रिवॉल्यूशन एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी अब एक अमली हकीकत बन के सामने, आपका ये बयान अमली हकीकत बन करके अब सामने आ रहा है। उस वक्त तो लोगों ने बड़े मजाक उड़ाए, बड़े फन खाने का, क्या अरे भाई इनका कहाँ गया भाई एक्सपोर्ट रिवॉल्यूशन करने का, अभी तो इनकलाब को अपनी सरहदों में बचाना मुश्किल है, खातमी साहब से तो निमट लो। जब खातमी साहब सदर थे और जिरियान और ग्रीन रिवॉल्यूशन और मूसवी साहब, तो कहा गया भाई इनकलाब बहुत एक्सपोर्ट करने चले थे, तो अभी इनकलाब को अपनी सरहद के अंदर तो निमट लो, बचा लो, फिर देखते हैं कि इनकलाब एक्सपोर्ट रहा है। फिर एक इमाम खुमैनी ने कहा कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पूरी दुनिया में बुलंद नहीं होता है उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठे। आप देखिए कि उसी जिरियान पर इस वक्त आ रहे हैं, इनकलाब उसी रविश पर जा रहा है, एक जहानी, तो इस उसकी जहानी, इसके ग्लोबल डायमेंशन से, इस जहानी जहत से अमेरिका परेशान है, इसलिए कि वो खुद एक जहानी ताकत है जो इस वक्त पूरी दुनिया पर मुसल्लत है। मगरिब की 500 साल से हुकूमत है और पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी, पूरी एक तहजीब है, वो इतना आसानी से तो अकब नशीनी अख्तियार नहीं करेगा ना। और सीरिया उसको ये नज़र में आ रहा है कि यहाँ ही से कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है, ये एक मजबूत ये जो पिलर्स हैं मुजाहमत के, जो पिलर अमरीकी ताकत से मुजाहमत का जो एक महवर है, एक एक्सिस है, उसका एक मजबूत पिलर सीरिया है। वहीं से हिजबुल्ला के लिए पाइपलाइन जाती है, मतलब कि हर सपोर्ट किया ये। और जैसा कि आगा सैयद आगा हसन नसरुल्ला ने कहा था, अभी जब वो जनूबी बेरोत पर बम्बार्ड किया था, यानी वो धमाके कार बम धमाके हुए थे और उसके नतीजे में, तो आगा ने क्या कहा कि उस वक्त ये खोल दिया ये बंद कि भाई सीरिया के मुतालिब उन्होंने कहा कि सीरिया को हम कभी भी नहीं छोड़ें, और सीरिया वो मुल्क है जिसने हमें 2006 में सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स दिए थे, जिसके जिसके ज़रिए हमने इसराइल के सोफिस्टिकेटेड टैंक्स और दूसरों को भूस बना के रख दिया था। तो एक तरफ से उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, सीरिया की ताकत का राज भी खोला ताकि दुश्मन उसको नरम चारा ना समझे, इतना नरम चारा नहीं समझे। तो अव्वल एक ये कि एक तो जहानी जहद की वजह से, दूसरे ये कि सोवियत यूनियन के शिकस्त के बाद, उससे पहले जब बाईपोलर वर्ल्ड था तो अमेरिका ने हमेशा अपना एक दुश्मन कायम करके रखा ताकि अपनी आवाम को अपनी फौजी बजट के लिए और ज़ायोनिस्ट लॉबी की तमाम मैनूवरिंग और दाव पेच और पॉलिसी के फेवर में काम करने के लिए एक दुश्मन, एक फर्जी दुश्मन खड़ा करते हैं। चाहे उस वक्त कम्युनिज्म को खड़ा किया हुआ था कि यह हमारा फर्जी दुश्मन है, हालांकि मैंने बारहा ये अर्ज किया है कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में कोई बुनियादी फर्क नहीं था, दोनों ही मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी से उभरे थे, दोनों ही मादी में यानी कि दुनिया की और जिंदगी की कायनात की मादी ताबीर ही पर यकीन रखते थे, मादियत से मावरा किसी फिक्र पर उनका एतकाद नहीं था, सब मादी थे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को अपनी जरूरत थी और देखते थे कि अभी जो मानवियत और मजहब पर मबनी कोई अकीदा या फलसफा है उसके अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि वो हमारा, उसको वो डिस्टेंट कहीं दूर समझता था या अभी किसी काबिल नहीं समझता था, लायके इतना नहीं समझता था। यानी क्या अजीब शान है खुदा की कि अवाम के जरिया जिसकी किसी को गुमान भी नहीं था, अहले सुन्नत बिरादरान को भी गुमान नहीं था, एक वजह, और अमरीका अब उसको लायके इतना समझता है, कहते भाई ये कौन सा खतरा पैदा हो गया। तो शाम उस मज़ाहमत की एक उस जो एक्सिस है ना, एक मानवी मज़ाहमत का, एक मादी ताकत के मुकाबले में एक मानवी फिक्र पर मबनी मज़ाहमत का जो एक्सिस है उसका एक बहुत ही अहम सुतून है, पिलर है। तो इस वजह से सीरिया उसके लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। दूसरा यह है कि अब जब कम्युनिज्म, मैंने आज किया ना, जब कम्युनिज्म खत्म हो गया यानी कि सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तब उसको एक दुश्मन बनाना था, तो दुश्मन उसने अब मुसलमान और इस्लाम को था, चूंकि ईरान का इस्लामी इनकलाब आ चुका था। अगर इस्लाम का इनकलाब ना आया होता, इमाम खुमैनी का जरियान कामयाब ना हुआ होता, ईरानी कौम हकीकी इस्लाम, इस्लाम नाब और इस्लाम तशय्युग की जो के अंदर जो डायनामिक्स है उसको, उसके तहर्रुक को दुनिया के सामने वाजे ना किया होती ईरानी कौम ने, ईरानी मिल्लत ने, तो आप यकीन मानिए कि हरगिज़ मुसलमान को जायगुजी नहीं करता, यानी उसकी जगह पर रिप्लेस नहीं करता सोवियत यूनियन कम्युनिज्म की जगह पर इस्लाम और मुसलमान। तो अब इस्लाम और मुसलमानों को घेरने के लिए क्या तरीका था? जाहिर है कि अगर हकीकी इस्लाम पर कोई मिल्लत इख्तियार करे तो उससे ज़्यादा महज़ब कंसिडरेट आकिल प्रूडेंट यानी होशियार और बालिग नज़र कोई कौम नहीं हो सकती है जो दूसरों को मुतासिर करे और तहजीब व तमद्दुन को तरक्की दे सके। उसके मुकाबले में मगरिब भी बौना नजर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ईरान में। लेकिन उन्होंने एक सुन्नी मकतब से लिए हुए इस्लाम, सुन्नी मकतब से भी नहीं था वो इस्लाम, यानी वो एक वहाबी और तकफीरियत पर मबनी इस्लाम को यानी कि ज़रा तकवीत बख्शी। इस तरह की चीज़ें यानी जर्म्स तो पाए जाते थे उस मकतब में, वहाँ से उठाया, उसको अपने तौर से दिया और अलकायदा और तालिबान जैसी इंटिटीज़ क्रिएट की जिसमें इस्लाम को एक वहशी और ये और वो है ना, मतलब कि जिसके मतलब कहा कि मगरिब के मतलब वो अकबर इलाहाबादी एक शायर थे, उन्होंने पहली एक जगह एक उनकी कलीसा नज़्म है, कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा उनकी कलीसा नज़्म है, तो एक जगह वो ऐसे ही वो सटारिस्ट हैं, यानी उर्दू में तंज निगार शायर हैं, तंज करके इसलाह कौम की, बहुत बड़े हमदर्द हैं, है ना। उन्होंने मगरिब पर बड़ी खुल के तनकीद की है, मसलन कि औरतों के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि हामदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मा अंजुमन पहले चिराग खाना थी, है ना, उस वक्त के। या उसी पर एक कलीसा नज्म है, तो उसमें एक स्टोरी उन्होंने पूरी, बड़ी अच्छी शायरी भी बहुत है उनकी, अगर तो उसमें कि एक उनकी उनका सामना हो गया किसी लेडी से, जाहिर उस अंग्रेज की हुकूमत थी, मैंने तो कहा कि मेरा दिल उस पर आ गया, बिजलियाँ अपने तबस्सुम से गिराने वाली, और इस तरह से करके उन्होंने शायरी भी बड़ी अच्छी की है रोमांस की। तो आखिर में उन्होंने कहा कि मेरा इतना दिल उन पर आ गया, मैंने कहा कि मिस जरा सा वो मैं आपसे मतलब कि लव करता हूँ, और ये है कि आप अगर मुझसे शादी कर लें तो बड़ी। कहा कि तुमसे, अरे जिहाद वगैरह की बात करने वालों से बुए खून आती है इस कौम के अफसाने से, मैं तुमसे कहूँ तुम मुसलमान जिहादी बुए खून आती है। तो इस्लाम का जो मगरिब ने पता चला कि मगरिब का उस वक्त भी यही तसव्वुर था, बुए खून आती है इस कौम के अफसाने से, ये चीज़ उनके जहन में थी कि इसी को उभारना है। और तो फिर खैर वो उन्होंने उस बात को ख़त्म कर दिया कि तो अकबर इलाहाबादी ने कहा, अपनी एक कौमी नफ्सियात का जिक्र किया है एक शिकस्त खुर्दा ने, कि मैंने कहा कि मिस मेरे इस्लाम को अब किस्सा माजी समझो, तो हंस के बोली ये मिस के फिर मुझको भी राजी समझो। तो ये गोया कि उन्होंने पूरा अपना एक तंज ही तंज में बड़े हकायक खोले। तो ये बुए खू आती है इस कौम के अफसाने से। तो ये वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि है आया यू रिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, है ना। लेकिन इन्होंने इसको डाइवर्ट किया जो मगरिब पसंद थे, कि है आया, और सही भी दोनों पहलू निकलता ना, वो बड़े वहशी लोग थे ना जो तातार मुसलमान हुए थे, तो है आया यू रिशे तातार के अफसाने से, कि यही कि बुए खून आती है इस कौम के अफसाने से। तो ये बुए खून, तो उन्होंने ऐसे इस्लाम को वहशी दरंदगी पर मर यानी मुश्तमिल एक इस्लामी तसव्वुर को फ़रोग देना चाहा, और इसके लिए जो उन्होंने एंटिटीज़ को डेवलप किया, जो शनाख्त, जो तंजीमी हैयत या जो उसकी जिस्मानी हैयत खड़ी की, वो अलकायदा और तालिबान को, दरअसल उनको वो फुरन। और फिर के ये वहशी इस्लाम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, इंसानियत के खतरा, अब इसको पीछा करेंगे, इसको हिट करेंगे। चाहे वही किया उन्होंने, वही अफ़गानिस्तान में किया, वही इराक़ में किया, अलकायदा उसामा बिन लादेन, अरे उसामा बिन लादेन के मतलब कौन, ये ओपन सेक्रेट भी नहीं रहा, आप तो बिल्कुल ओपन बात रही ना कि इनका ये है। वो हैली बटन का जो था वो डिक चैनी नायब सदर था ना अमेरिका का 9/11 के वाक़े के वक्त, डिक चैनी एक जेविश वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका, हैली बर्टन आयल कंपनी का वो था उसका मालिक था, ओनर था, ओनर्स में से था, यानी कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक में से था। तो पता है कि ओसामा बिन लादेन उसके घर पर ठहरा करता था, और बिन लादेन कंपनी से उसके तेल के इसमें शेयर्स हुआ करते थे। तो एक वहशी सा, तो चुनांचा इस वक्त आपने देखा कि जो की वॉर हो रही है, किस बात पर हो रही थी, आगा हसन नसरल्लाह ने क्यों कहा कि अब हमारी जंग तकफीरियों से, इस मरहले पर क्यों कहा, इससे पहले नहीं कहा। वजह यह कि शाम में सबसे पहला हदफ जो था कि इसको पिरोज करना था, कि अब इस्लाम की किसी को कि अगर इसको पिरोज कर देंगे वो अमेरिका के कंट्रोल में, मगरिब के कंट्रोल में रहेगा, और अमेरिका हमेशा अपना मनमाना उससे काम लेता रहेगा, और जो हकीकी इस्लाम, इस्लाम नाब, इस्लाम तशय, उसका किला काम कर देगा आसानी से, ईरान शाम हिजबुल्ला सब को सफाया कर देगा। चांचा अल-कुसैर पर जब हिजबुल्ला ने, यानी हिजबुल्ला कूदी ही इसी बुनियाद पर है कि अब ये वक्त है कि अब सरहदों का फर्क नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि बस ये कि हिजबुल्ला मदद करेगी शाम, और कुसैर के स्ट्रैटेजी 2011 ही उन्होंने कर लिया था, और कितने वो बिल्कुल स्ट्रैटेजिक जगह जो कि मुत्तसिल था टर्की से भी, مسبدل تھا لبنان کے المستقبل پارٹی والے اہل سنت کے اس علاقے سے, المستقبل جو پیور امریکن ہاتھ میں کھیل رہی سو سعد حریری, اس کی وہاں سے ساری سپلائی لائن تھی, اسرائیل سے سپلائی لائن آ رہی تھی, سعودی سے وہاں سے سپلائی لائن آ رہی تھی, امریکہ اپنے مختلف طریقوں سے وہاں سے, اور تمام تر مزاحمت کے باوجود ہیوی کیجولٹیز ہوتی تھی. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ شام کے گویا کے محل میں, یعنی حافظ اسد کے محل میں گھس کر کے ان کے بہنوئی جو وزیر داخلہ تھا اور حسن ترکمانی جو سابق آرمی چیف بھی تھے ایران کا اور اس وقت وائس پریسیڈنٹ بھی تھا, سب کو انہوں نے قلعہ کو بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا. تو جب القصیر پر یہ ہو گیا تو بڑی تیزی سے ان کا صفایا, اور ادھر آغا حسن نصر میں کہتے ہیں کہ تکفیریوں سے ہماری جنگ ہے. یہ بہت عام بات ہے کہ یہ اس مرحلے پر کہا, یعنی کہ یہاں پر شکست جو ہے, یعنی وہ ایک تو جہانی جو ہے اس کا تھا, اب یہ دوسرا سب سے اہم اس وقت سب سے بڑی ہے کہ ان اس کا خاتمہ کر رہی تھی شامی فوج اور حزب اللہ مل کر, اور انشاءاللہ خاتمہ ہو کر رہے گا, ہے نا, وہ خاتمہ ہو کر رہے گا. اور تیسرا ان کی اس جنگ سے, شام کی جنگ سے مرادی تھی کہ اس طریقے سے شام کو کی کا حصار توڑ کر کے وہ لبنان میں گھسیں گے اور لبنان کی حزب اللہ کا محاصرہ کر کے حزب اللہ کی طاقت توڑ دیں گے اور اسرائیل کے ٹینشن ریلیز کر دیں گے. بھائی منصوبہ بند انہوں نے کیا تھا, اور اس میں سعودی عرب کو سب سے, یعنی دیکھیں اسرائیل کو سب سے زیادہ فکر تھی. یہ جو امریکہ نے یہ منصوبہ بندی کی اسرائیل اور سعودی عرب کی مشترکہ دباؤ پر, سعودی عرب آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی, ہم آپ کو جتنا پیسے ہیں دیں گے. اسرائیل کہہ رہا بھائی سعودی عرب دینے کے لیے تیار ہے آپ کو, آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ سے پورے مسلمان ممالک سے سعودی عرب اس کی حیثیت خادم الحرمین شریفین کی ہے, پوری سنی دنیا میں مسلمان اس کو عزت کی نگاہ ہیں, ہر جگہ سے جہادی تیار کر کے بھیجیں گے, آپ ان کو ویل اکوپڈ کیجئے, ویل آرمڈ کیجئے, کیا پریشانی ہے آپ؟ امریکہ پر ظاہر زائونسٹ لوبی کا پورا اثر ہے, اگر وہاں کی یعنی کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے بہرحال وہ یعنی کہ امریکہ فرینڈلی ہے ضرور ہے, یعنی جو سی آئی اے ہو یا وہ بن, انہوں نے اس بات سے کوئی بہت زیادہ یہ نہیں کیا, لیکن اب دباؤ ایسا تھا کہ بھائی زائونسٹ لابی کا کہ پولیٹیکل تمام لابیز جو ہیں اس کے بعد, اور یہ کیا اور بھیجتے رہے ایسے ایسے ہو گئے, کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ان کو ایسے ایسے. لیکن آپ دیکھیے کہ خدا پر توکل کرنے والی طاقت نے کس طریقے سے جنگ میں اپنی یعنی کہ اپنی برتری کو ثابت کیا, اپنی برتری کو ثابت کیا, اور سارے ان کے ملٹری ٹیکٹس کو خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. تو اب یہ جو بالکل صفایا, تو اب اس وقت امریکہ کو سوچیے کوئی نہ کوئی ہے, ان کو یہ دیا جائے کچھ کسی طریقے سے ان کو پھر سے اسپیس دلوائی جائے. اس کے لیے یقین مانیے کہ میں اول روز سے مجھ سے اسی دو روز پہلے تہران ٹائمز نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہے کہ کسی طریقے سے اس طریقے سے دکھاؤ کہ کسی طرح سے شام آمادہ ہو جائے تھوڑا سا ریلیکس دینے پر دہشت گردوں کو, تھوڑی سی کمزوری دکھا, اس کے سے پھر ان کو مار دے تاکہ جنگ میں تھوڑا سا توازن برقرار ہو. یہ ان کے ایک دم پورا وارشپ بھیج رہے ہیں, یہ بھیج رہے ہیں اور یہ آج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ سائیکولوجیکل بات, اس لیے کہ کوئی لاجسٹی نہیں ہے, کوئی منطقیت نہیں بنتی ہے کسی فورن پالیسی کی یا ملٹری اسٹریٹجی کے کہ امریکہ ایسی صورت میں جائے. یہ راک نہیں ہے, یہ صدام نہیں ہے, یہاں جائیں گے تو جنگ جہانی چھڑ جائے گی. ایران جنگ میں بالکل پورے طور سے اس میں کسی قسم کی ریزرویشن ایران نے نہیں رکھی, نہ حزب اللہ نے رکھے, کہا گیا ہمیں جانا ہوگا, ہم جائیں گے ایران شام جائیں گے, کسی قسم کو وار آ گئے. ایک روز پہلے ہی, دو روز پہلے ہی مسعود جزائری جو وہاں کے جوائنٹ چیف آف دس کے ڈپٹی کمانڈر ہیں, انہوں نے کہا دیا تھا کہ امریکہ ہماری خط قرمز کو ریڈ لائن کو جانتا ہے, امریکہ جانتا ہے, और अगर उसने इस लाइन को अबूर करें तो उसको डायर कंसिक्वेंसेस का सामना करना, भयानक नताइज का सामना करना। ये एक जुमला कहा था और कुछ नहीं, किसी का बयान आया कहते मानो। और यहाँ पूरी दुनिया में यहाँ बहस हो रहा है कि भाई ये तो जा रहा है शाम, लेकिन दे वेर पीसफुल, ईरानियन जनरल्स पीसफुल थे। हसन नसरुल्ला तो आज तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, अभी तक आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मतलब बहुत पीसफुल है वो। और इसराइल ज़ेयूनी लॉबीज की वजह से बड़ा कि भाई ये अभी तक नहीं बोल रहे हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि ये क्या करने वाले। जाहिर है कि हसन, जब तुम इतना बना दिए जंग का माहौल तो हसन नसरुल्ला तो यह है कि तुम आओ करके देखो। जिस तरह इसराइल ने हमला किया तो फिर हसन नसरुल्ला ने तो सब नहीं बोला ना, IDF ने, इसराइल डिफेंस फोर्स ने जब हमला किया 2000 तो हसन किस वक्त आए, जब उन्होंने हिट किया मिसाइल को और डुबो दिया एक एयर यानी कि वॉरशिप को, फिर उसके बाद हसन नसरुल्ला कि मैं फरजंदे अली सैयद हसन नसरुल्ला आपसे वादा करता हूँ कि आपको शर्मिंदा नहीं मिलना चाहिए। और मैंने इसराइल को कहा और आइंदा आप देखेंगे कि किस तरीके से इसराइल के सारे असलहे आतिश के शोलों में फरोजा होते हैं और हम उनका बेड़ा गर्क करते हैं। तो यही होता कि अगर अमेरिका इस किस्म की हिमाकत करता तो आप देखते कि आगा कोई ऐसा सरप्राइज दे करके फिर आते पब्लिक के सामने और कहते कि अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ। बड़ा यार अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन की और कोई मामूली दुनिया की सुपर पावर से अक्वाम मुत्तहदा के यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट करने में हिजबुल्ला को ना पाए, यहाँ तक के अक्वाम मुत्तहदा से भी इसको यानी कि करारदाद मंजूर करा दिया डिसआर्म करने का, उसके बावजूद भी दुनिया की कोई ताकत हिजबुल्ला को डिसआर्म नहीं कर सकती। मतलब आप कितने तारीख के इस मरहले में जिंदा हैं कि आप हक की कुव्वत को देख रहे हैं, आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। माने अंबिया के दौर में लोगों ने इस तरह का नजारा नहीं देखा। बेशक इमाम हुसैन हक पर थे और लोगों को दिखाया, लेकिन आप देखें किस कदर तकलीफ उसत हुई होगी अहले हक को कि उनके इमाम और इमाम का खानदान तह तह कर दिया गया हो, कहने कि भाई वो पीरोज नहीं है तो उसकी बरस उसकी सालगिरह पर मनाए तो आपके यहाँ से भी कोई आदमी आप दीजिए कोई बोले। तो आए हमें तो ये नूडा कुश्ती लगता है इसराइल का और हिजबुल्ला का, इसलिए कि इसराइल को तो कोई शिकस्त नहीं है। इसराइल इनविंसिबल है, शिकस्त ना पजीर है, ये ऐसे नज़रियाती लोगों के ज़हन में बैठा ही हुआ है। तजुब और अफसोस का मुकाम है, ये अफसोस का मुकाम। ये नहीं देखा था कि 2000 में किस तरीके से जनूबी लिबनान से इजरायली आर्मी को बेदखल की थी हिजबुल्ला और पुरोज। सही बात यह है कि वो एक ऐसा वाक़ था 2000 का, और 2000 को उसमें को अगस्त में जाना था, तय था जुलाई या अगस्त में अक़वामुत तहदा का इजरायली फौज जो है ये करेगी, रिट्रीट करेगी, चली जाएगी, छोड़ देगी। ये माहदा खुद इसराइल ने लिखा था अक़वामुत तहदा को बीच में मेडिएटर बना करके कि हम छोड़ देंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई थी। लेकिन इस माहदे का वो मई में चली जाती है, 2-3 महीना पहले ही खुद से पसपाई। ये इतनी बड़ी यानी पूरी 1400 साल की मुसलमानों की शिकस्त की तारीख में वो अगर अहले नज़र होते तो उसी वक्त में कि ये कुछ और ही चीज़ है। अहले नज़र होते तो ईरान में जब इस वक्त इनकलाब पीरोज हुआ था इस्लाम के नाम पर, उसी वक्त बात समझ में आ जाती मुसलमानों को। लेकिन अगर आप खुदा से दूरी के नतीजे में अक्ल पर लोगों के पर्दे पड़ जाते हैं, अगर इंसान के अंदर तकवा होता है, खुदा से कुर्बत होती है, तो अंबिया को कौन लोग पहचानते थे? अहले नज़र ही पहचानते थे ना। वो जब चाहे वो उसका ईसाई से था, लोगों ज़ाहिर है कि वो जब गए थे हज़रत यानी कि हज़रत अबू तालिब के साथ, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ ले थे, साथ ले गए थे तजारत में, तो शाम के एक राहिब बोहिरा नामी ने क्या कहा था कि भाई ज़रा से इसकी हिफाजत फरमाओ, ये मुझे उस वही मऊद नबी लगता है खातिमुल मुरसलीन जिसका वादा किया गया। भाई वो अहले नज़र था, वो एक ऐसा शख्स था जिसका खुदा से इर्तबात था बावजूद के दीन हकीकत गुम हो चुका था, मुनहरिफ कर दिया गया था तौरात। लेकिन जाहिर है कि एक इंसान का अपना ताल्लुक होता है ना, तो उसके नजीम उसकी नज़र। वो तो हैरान रह गया हज़रत अबू तालिब। फिर जब मसला आया कि जब वही उतरी तो आपने देखा कि हज़रत खदीजा से आपने अपनी परेशानी का इजहार किया, चूँकि वो आपकी बड़ी वफाकेश जौजा थी और वो भी बड़ी यानी कि ऐसी खातून थी कि जिस पर रसूलल्लाह इफ्तखार करते थे। तो आप अपने चचाजाद भाई जो ईसाई के आलिम इसके तौरेत के आलिम थे उनको लाएं और इंजील के कि भाई ये ऐसे ऐसे अपने तजुर्बात बयान कर रहे हैं। कर वही ये नामूस से ये वही नामूस है जिब्राइल है जो इस पर आया है। तुम कहो कि भाई ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो इसके इसकी कौम इसकी मुखालफत करेगी उसके मुकाबले में इसका साथ दूंगा, इस पर ईमान लाऊंगा अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहा। तो जो अहल नज़र में बोहिरा क्या था, बोहिरा की वो इलाही नज़र थी जो उसको अपने तकवा की वजह से और अपने क्या कहते हैं तसलसल की वजह से, दीनी तसलसल की वजह से जो उसके ख़ानदान में शिफ्ट हुआ, तो वो था वो पहचान गया नबी को। लेकिन उसी वक्त अबू जहल अपना सगा चचा जिसने रसूल खुदा की तवल्लुद पर 140 ऊँट या कितने ज़बह किए थे और दावत बढ़ाई थी, अबू लहब, वो क्या हुआ, वो एक दिन दुश्मन बन गया। और ऐसा दुश्मन के कुरान ने मुजम्मत की नाम लेकर तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के हाथ टूटे। तो ये चीज होती है। तो ये जो शाम का मसला है, ये शाम का मसला ये कि वो अलग ये कि अलकायदा की फिक्र का जो बड़ा बहुत ही कामयाब हथकंडा था, चुनांचे अब देखिए कि अब तकफीरी और अलकायदा टाइप की इंतहा पसंदाना फिक्र के खिलाफ इस्लामी इनकलाब, इस्लामी जिरयान, इस्लामी तहरीक की एक आमद हुआ। अब इसको किसी मसलहत की वजह से इस वक्त इसको इसके मामले में कोई लो प्रोफाइल पर नहीं जाएंगे, हम टोन डाउन नहीं होंगे, इसलिए कि ये चैलेंज बनकर आ गया। ये इस्लाम दुश्मन ताकतों के अहम आलेकार के तौर पर सामने आए, इसमें कोई नहीं। ये खुद अहल सुन्नत में जो इस्लामी तहरीक थी उसका भी किलाकमा किया, जैसे मिस्र का, उसकी वजह से मिस्र की क्या इस्लामी जिरियान कोलैप्स हो गया बिल्कुल, उसकी वजह से फलस्तीन की मूवमेंट को इस जिरियान की वजह से नुकसान पहुंचा है। चाहे ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ इसमें अहले तशी का या किसी का नहीं, इस्लाम का पूरा नुकसान हो रहा है इससे। अब जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज पर भी तो हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, आम सुन्नियों मसाजिद में भी हो रहे हैं, सुन्नी भी इसके लपेट में आ रहे हैं, शिया भी लपेट। तो ये तो एक जबरदस्त फितना है, ये बहुत खारजी से भी बड़ा फितना है और ये मगरिब के लिए बहुत बड़ा। और हिजबुल्लाह, मैं अर्ज करूं कि तो वो तीसरा जो हिजबुल्लाह का मुहासरा करके इसराइल के प्रेशर को रिलीज कर दिया जाए और इसराइल को यूं तहफ्फुज़ दे दिया जाए, इसराइल को फिर से मशरिक वस्ता में एक इनविंसिबल पावर की हैसियत से मुतारिफ कराया जाए, नाकाबिल तस्खीर है ना, शिकस्त नापजीर ताकत की, ये वो मकासद थे। और ये जो हुआ खड़ा है ये साइकोलॉजिकल बार है। मैं फिर ये कहता हूँ कि आपने देखा कि इस दो तीन रोज में कितना पसपाए, आज लंदन बड़े डेविड कैमरॉन साहब आए थे, भाई टोनी ब्लेयर भी तो इसी तरह आए थे ना, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर के फिर पार्लियामेंट में रखता, और पार्लियामेंट से क्या कोई नहीं था, पार्लियामेंट एकदम आसानी से। असल एक अव्वल तो उनका आलाकार था, उसकी वर्थ को वो पहचानते थे सद्दाम की, हर चीज़ उनको मालूम थी, तो उन्हीं का आलाकार था, हमारी बिल्ली हमें ही मियाओ उनको मालूम था। फिर यह कि जब जाना कि इस पर बहुत ही इजी प्रे है, बहुत ही नर्म चारा, आसानी से इसका शिकार कर लेंगे, वो सारी चीज़ें। अब सद्दाम से बशारुल असद का और इराक से शाम का, ये एक बहुत ही यानी कि बहुत ही या तो जानबूझकर है किसी यानी हकीकत पर मबनी किसी कुव्वत को तस्लीम ना किया जाए, या फिर ये कि ओवर सिंप्लीफिकेशन है, हद से बड़ी हुई सादा लोही है, दो ही वजूहत हो सकती हैं। तो वो नहीं हो सकता, ये सारा साइकोलॉजिकल बार है। एक बड़ा ऐसा जैसे कि मैं अपने बाज़ दोस्तों से कहा कि वो हमने इमाम अली की फिल्म में देखा था कि कुछ ब्लैकमेलिंग चाह रहा था अमर बिन अलास माविया से, तो उसने किया ये कि
पूरी पूरे तरीके से चाह के भाई ये हो जाएगा, हम तो बिल्कुल मुजाहमत में और तुम कुछ भी कर लो मैं कहूँ।
जब अमीर शाम ने उसको कहा, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको बकरे की यानी कि जानवर की तरह चारों पैर बांध के, चारों हाथ पैर बांध करके ज़बह कर दूँ, और जब उसको यकीन हो गया तो कहा गया माविया तुम कहाँ हो, अरे मैंने तो समझा था। उस वक्त वो एक्टिंग आप देखें उसने की, तो कि ऐसा करो कि ये खुद पसपाई पर मत हो। तो फिलवक्त ये ऐसे ही है, लेकिन आप यकीन जानिए कि हिमाकतें कर सकता है, यानी कि कभी कभी जब इन इसी खुदा ने मुकद्दर कर दिया हो कि इसी मरहले पर, तारीख के इसी मरहले पर, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अमेरिका की मौत हो जाए, तो अगर खुदा ने तो मुमकिन है हिमाकत कर भी दें, लेकिन हिमाकत के नतीजे में आप देखिए कि कितना सारी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी भाई। पूरे क्या पर्शियन गल्फ में जो तवानाई के ज़खायर हैं, कोई है माइका लाल के ईरान के मुकाबले में उस पर काबिज़ हो जाए? कम से कम मैं ये बात काबिल पूरे एतमाद से कह सकता हूँ कि मगरिब इस काबिल नहीं है कि ये सिपाह और बसीज और ईरान की इस्लामी अफवाज की मुज़ाहमत और शुजात और दिलेरी उनके ईमान के इसमें जो है अपनी नेवल फोर्स को वहाँ कमी नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सूर्य ग्रह, ये साइकोलॉजिकल बिल्कुल ऐसा कर दो कि लगेगी, और अगर तो इस साइकोलॉजिकल वार से उनकी पसपाई आप देखें कि जर्मनी ने इनकार कर दिया, ब्रिटेन ने इनकार कर दिया, अब वो कहते हैं कि हम अपने बेहतरीन मुफाद में, यानी कि अपने बेहतरीन कौमी इंटरेस्ट में ये फ़ायदा करें। ये खुद एक एम्बिगुअस जुमला है ना, एक मुबाम जुमला है, एक मुबाम जुमला है। अब ये कि अगर लंदन ने साथ नहीं दिया है तो हम अपने हम यानी कि सिंगल हैंडेडली अटैक करेंगे, या ये कि हम बस भाई, अब ये एक मुबाम जुमला का, इसमें कोई आप यानी कि तायुन के साथ ये नहीं कहा है, अमरीका ने यह नहीं कहा कि हम सिंगल हैंडेडली करेंगे, तो एक मुबाम एक डिप्लोमेटिक जुमला है और मुबाम जुमला है। तो ये बात तय है कि केमिकल वेपन्स वगैरह उनको क्या, हम दर्दी वाम की बात बिल्कुल तयशुदा है भाई। भाई यूएन डिप्लोमेट थी ना, क्या कार्ला डी पॉइंट, हाँ यूएन डिप्लोमेट थी जो गई थी वो उसके साथ लफदर इब्राहिमी के साथ कुछ मई में, उसने साफ कर दिया था कि भाई ये जो खानुल असल में जो इन्होंने नर्व गैस सैरिन के नामी नर्व गैस का इस्तेमाल किया, नर्व एजेंट का, वो रिबेलियंस ने किया है, वो बागियों ने किया है, उसका वाज स्टेटमेंट है। अब आप एक नया ढोंग मचाए, 1300 लोग मर गए दमिश्क, इसमें ये खुद ना भाई ऐसे पकड़े हैं, उनके पास सबूत है, मुअल्लिम ने वो फॉरेन मिनिस्टर ने मुअल्लिम ने खुद कहा कि मैं ऐसे सबूत दे सकता हूँ भाई, सऊदी अरब से वो सारे कंटेनर्स आए मेड इन सऊदी अरब लिखे हुए हैं, उर्दन से वो सारे जो 4000 टन तो एक्सप्लोजिव की सप्लाई हुई है, 400 टन की एक्सप्लोजिव्स आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, और इसके बावजूद आप एक शोर और हवा मचा रहे हैं कि साहब ये भाई ये साइकोलॉजिकल वार है। बस ये है कि खुदा हमें भी इस जिरियान में यानी कि पूरी दयानतदारी के साथ शिरकत का मौक़े फराहम करे, और ये कि इस जिरियान को इमाम ज़माना से मुत्तसिल करे।